आदित्य वहां से उठकर अपने कमरे में आ गया था, मगर उसके दिमाग में वही महेश से हुई बातें घूम रही थीं। उसने फैसला कर लिया था, वो अपनी माँ की मौत की जांच कराएगा। माना और बच्चे सो चुके थे, मगर आदित्य की आंखों में नींद नहीं थी। आदित्य ने माना के चेहरे पर झुककर उसके माथे पर प्यार से चूमा, फिर प्यार से उसके बालों को सहलाया। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ माना, मेरी जिंदगी के ये 7 साल तुम्हारे बिना कैसे गुजरे हैं ये मुझे ही पता है। फिर उसने झुककर माना के गाल पर प्यार से चूमा। उसके ऐसा करने से सोई हुई माना थोड़ी सी कसम साई। आदित्य उसे ऐसे करता देखकर मुस्कुरा पड़ा। उसे लगा माना को ठंड लग रही है, तो उसने माना का ब्लैंकेट ठीक कर दिया। मेरी जिंदगी में खुशियों ने दस्तक बहुत देर से दी है, मगर उसके दिमाग में अब एक और परेशानी चल रही थी। उसने अपने पिता धर्मपाल जी को फोन लगाया। बेटा, इतने दिन हो गए तुमने कोई फोन ही नहीं किया, कैसे हो तुम? धर्मपाल जी पूछने लगे। मैं तो ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ। धर्मपाल जी आदित्य की आवाज़ में एक खनक महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा खुश है। तुम्हारी आवाज़ मुझे अच्छी लग रही है। जब जहाँ से गए थे तुम्हारी आवाज़ में ये चहक नहीं थी। मुझे लगता है मेरे बेटे को कहीं प्यार तो नहीं हो गया किसी से, धर्मपाल जी अपने अनुभव के हिसाब से बोले। अगर बेटा ऐसी बात है तो मैं बहुत खुश हूँ। अगर ये बात गलत है तो भी किसी को ले आओ मेरी बहू बनाने के लिए। तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। वो लड़की चाहे जो भी हो, मैं उसे अपने परिवार में शामिल करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो इंडियन हो चाहे कोई गोरी हो, धर्मपाल जी ने कहा। सही बात है डैड, मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है, मगर अभी नहीं। मुझे आपसे अपनी माँ के बारे में पूछना था। हाँ हाँ, क्यों, क्या हुआ? अनीता ने फ़ोन नहीं उठाया क्या? मैं तुम्हारी अभी बात कर देता हूँ अनीता से, वो घर पर ही है। मैं अनीता माँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी जन्म देने वाली माँ की बात कर रहा हूँ। क्या बात है, तुम्हें आराध्या की याद कैसे आ गई? ठीक तो हो ना तुम बेटा? अपनी माँ के बारे में ऐसे अचानक पूछने से धर्मपाल जी को आदित्य की चिंता होने लगी। बस ऐसे ही डैड, मैंने किसी छोटे बच्चे को अपनी माँ के साथ देखा तो मुझे आराध्या माँ की याद आ गई। पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? धर्मपाल जी कहने लगे। डैड, आप मेरी माँ से कैसे मिले थे? तो तुम्हें हमारी लव स्टोरी जाननी है? ऐसा ही समझ लीजिए डैड, मुझे अपने माँ बाप की लव स्टोरी जानने का हक तो है, आदित्य हंसने लगा। जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था तुम्हारी माँ मेरी जूनियर थी, बहुत खूबसूरत थी। वो तुम्हारे जैसी आंखें थी उसकी, तुम्हारे जैसे बाल, गोरा रंग हद से ज्यादा। उसके गालों में डिम्पल पड़ते थे जो उसे और भी हसीन बनाते थे। अगर कोई ये कहता कि वो इंडियन नहीं है तो सब मान जाते। जब हंसती थी तो क्या लगती थी तुम्हारी माँ? बस बस डैड, आप तो मेरी माँ की खूबसूरती में ज्यादा ही खो गए थे। और नहीं तो क्या, उसकी तस्वीरों में भी वो खूबसूरती नहीं है जो उसमें असल में थी। पहली ही नज़र में मैं उसे अपना दिल दे बैठा था। तो क्या माँ को भी आपसे पहली ही नज़र में प्यार हो गया था? नहीं, कितने दिन तो तुम्हारी माँ ने मुझे आंख उठाकर भी नहीं देखा। फिर बड़ी मुश्किल से मनाया मैंने तुम्हारी माँ को, नकली गुंडे भेजे उसके पीछे, और फिर मैं उसे बचाने के लिए खुद आ गया था। इससे तुम्हारी माँ मुझसे इम्प्रेस हो गई थी। क्या बात है डैड, कैसे मनाया आपने माँ को? क्या उन्हें बाद में पता चल गया था? नहीं, उसे तो आज तक नहीं पता कि ऐसा हुआ था, धर्मपाल जी हंसने लगे। कोई बात नहीं डैड, मैं बताऊंगा माँ को। मेरे कहने का मतलब है, जब मैं दूसरी दुनिया में उनसे मिलूंगा तब बताऊंगा मैं आपके बारे में। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम तो उसकी आखिरी निशानी हो, तुम हजारों साल जियो, धर्मपाल जी कहते हुए उदास हो गए थे। डैड प्लीज उदास मत होइए, अब मुझे आगे बताओ, फिर क्या हुआ, कैसे हुई आप लोगों की शादी? हम दोनों को प्यार हो गया, मगर तुम्हारी नानी माँ को मैं पसंद नहीं था। उन्हें ऐसा लड़का चाहिए था जिसे वो घर जमाई बना सके, क्योंकि तुम्हारी माँ अपनी माँ बाप की अकेली संतान थी। मेरे माँ बाप भी अकेले थे, वो मुझे वहाँ पर रहने की इजाज़त नहीं दे सकते थे। तुम्हारे नाना जी तो मान गए, मगर नानी माँ तो मानने को तैयार ही नहीं थी। और घर में तुम्हारी नानी माँ की चलती थी, उनकी परमिशन के बिना तो शादी नहीं हो सकती थी। तुम्हारे नाना भी डरते थे तुम्हारी नानी माँ से। मैं अपनी माँ बाप को लेकर गया, वो नहीं मानी तो तुम्हारी माँ ने धमकी दी कि अगर उसकी शादी मुझसे नहीं हुई तो वो आत्महत्या कर लेगी। तब जाकर मानी तुम्हारी नानी माँ। हम लोग बहुत खुश थे, जिंदगी बहुत हंसी खुशी चल रही थी। तुम्हारी नानी माँ को भी मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। फिर तुम पैदा होने वाले हो गए। तो क्या आपको नानी माँ ने माफ कर दिया? क्या उन्हें शादी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं, शादी के बाद जब तुम्हारी माँ खुश थी तो वो भी बहुत खुश थी। माँ की खुशी तो उनके बच्चों की खुशी में होती है। जब तुम पैदा होने वाले हुए तो तुम्हारी नानी माँ तुम्हारी माँ को अपने साथ ले गई। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी माँ वहाँ जाए। मैंने कहा भी था तुम्हारी नानी माँ से, आप ही हमारे पास रह जाएं, मगर उन्होंने कहा कि ये रिवाज है, पहला बच्चा ननिहाल में ही पैदा होता है। मैं चाहकर भी रोक नहीं सका। ना चाहते हुए भी मैं तुम्हारी माँ को वहाँ भेज दिया था। वहाँ तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हारी माँ को कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई, बाकी तुम्हें सब पता ही है, धर्मराज जी उदास होकर बोले। डैड, और अनीता माँ से कहाँ मिले? आपकी उनके साथ शादी कैसे हुई फिर? तुम्हारी अनीता माँ आराध्या की सहेली थी। वो अनीता के पिता तुम्हारे नाना के यहाँ मैनेजर का काम करते थे।
दोनों साथ में पली पढ़ी थीं, कॉलेज में भी दोनों साथ ही थीं। उस जमाने में कौन से मोबाइल फोन होते थे, तो हमारे लव लेटर भी वही लेकर जाया करती थीं। फिर जब तुम पैदा होने वाले हुए, तुम्हारी माँ नानी माँ के यहाँ चली गई, तो तुम्हारी अनीता माँ ने तुम्हारी आराध्या माँ की बहुत संभाल की, पूरा ध्यान रखती थी वो उनका, तुमसे बहुत प्यार करने लगी थी। अनीता से शादी इसी वजह से की क्योंकि तुम्हारी माँ की मौत के बाद तुम अनीता के सिवा किसी के पास नहीं जाते थे, तो सभी बड़ों ने फैसला किया कि अनीता की शादी मुझसे कर दी जाए, इससे तुम्हें माँ मिल जाएगी। तब मैं शादी के लिए तैयार नहीं था, मैं आराध्या की मौत के बाद शादी नहीं करना चाहता था, मगर तुम्हारे दादा दादी और नाना नानी ने जबरदस्ती कसम देकर मेरी शादी अनीता से करवाई। अनीता ने तुम्हें और मेरे घर को बहुत अच्छे से संभाला, मुझे कोई शिकायत नहीं है अनीता से, मगर मैं तुम्हारी माँ को आज तक नहीं भूला, बहुत चाहता था मैं तुम्हारी माँ को, कहते हुए धर्मपाल जी की आंखों में आंसू आ गए थे।